आज हमारे बीच बाबा के बेहद यज्ञ की सेवा के निमित्त बने हुए आदरणीय राजयोगिनी शीलू बहन जी पधारे हैं। हम सब बहुत ही स्नेह से, दिल से स्वागत करते हैं। आप 12 साल की आयु से बचपन से ही बाबा के ज्ञान में चलते हैं। करीब 69 से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आपने संपूर्ण समर्पित जीवन सेवा में किया। शुरू में आप 1970 से 74 तक आपने भारत के 2-3 स्थान, जिसमें बेंगलोर, हैदराबाद, बंबई और काठमांडू में सेवाएं दी, और 74 से 76 तक विशेष अफ्रीका और मॉरिशियस के स्थानों पर अनेक सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। बाद में 76 से आप बाबा की मधुवन पावन भूमि में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हो। यहां भी खास राजयोग शिविरों का संचालन बड़ी कुशलता से आप शुरू से 76 से कर रहे हो, और साथ साथ बाबा के घर में जो समय प्रति समय विदेशियों की भी सेवाएं शुरू हुई, आगमन शुरू हुआ, तो उन विदेशी भाई बहनों की भी सेवा के लिए आप हमेशा खास हिंदी टू अंग्रेजी अनुवाद ट्रांसलेशन करने में आप माहिर हो। कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी आपने अपने ज्ञान युक्त प्रवचनों से सबको लाभान्वित किया है। राजयोग शिविर भी बहुत अच्छी तरह से कराते, आप सबने वो शिविर भी सीडी में या वीडियो में सुनी होगी, देखी होगी, और खास टीवी चैनल्स जिसमें जी टीवी, सोनी टीवी, फिर ये आस्था संस्कार आदि चैनलों में भी आपके प्रवचन समय प्रति समय आते ही रहते हैं। इसलिए आपने बहुत ही बेहद विहंग मार्ग की सेवा में विशेष पार्ट बजाया है, और एजुकेशन विंग जो हमारी कार्यरत है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हो। विदेशियों की सेवा के लिए खास आप उस कारोबार में हो, जिस कारण विदेशी भाई बहनों ने भी आपकी अपने देशों में भी बहुत सेवाएं ली है, आपने प्रदान की है। 5 महाद्वीपों में करीब 60 देशों में आपने ईश्वरीय सेवा की है, तो ऐसी विशेष अपनी ज्ञान युक्त दिव्य बुद्धि से और अपने स्वपुरुषार्थ में बाबा के ज्ञान के विशेष अनुभवों के आधार से हमें आज खास क्लास कराएंगे। आत्माभिमानी स्थिति विशेष आपका टॉपिक है, तो हम सभी अभी ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शीलू बहन जी को सुनेंगे। फिर से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति। हम सभी राजयोगी, राजऋषि बाप दादा के नूरे रतन अति लाडले बच्चे बैठे हुए हैं। सुनाई देता है? ठीक है ना आवाज? बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही आकर के मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। तो राजयोग क्या है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो राजयोग माना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमात्मा की यथार्थ स्मृति, ये राजयोग है। तो आत्मिक स्थिति भी चाहिए, परमात्मा की यथार्थ स्मृति चाहिए, तब राजयोग होता है। और स्मृति शब्द और स्थिति शब्द इनकी गहराई है। तो आत्मिक स्थिति के बिना परमात्मा की यथार्थ स्मृति नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का ही संबंध परमात्मा से है। तो हम सब यही कहते हैं हम आत्मा हैं, और शुरू से लेकर बाबा ने आत्मा का पाठ हम बच्चों को पक्का कराया है, और अंत में भी यही पाठ अगर याद होगा तो हम एक सेकंड में पास हो सकेंगे, जो आज भी बाबा ने मुरली में सुनाया वरदान था ना, कि अंत में सेवा भी याद ना आए, क्या याद आए केवल बाबा याद आए और मैं आत्मा हूँ। आत्मा का ही तो संबंध बाबा के साथ है ना, बाबा भी कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माओं से बात करता हूँ, शरीरों को नहीं देखता हूँ, शरीरों से बात नहीं करता हूँ। तो बाबा हम बच्चों को उसी आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो हमें भी बाबा आप समान बनाते हैं और कहते हैं बच्चे आत्मिक स्थिति में रहो और सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। तो आत्मिक स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति में हम सहज रीति से कैसे रहें? कई बार बाबा ये भी कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा माया से तुम्हारी बड़ी युद्ध है, माया तुम्हें देह अभिमानी बनाती है और बाबा तुम्हें आत्म अभिमानी बनाते हैं, तो माया से तुम्हारी बॉक्सिंग है। माया क्या करती है, कभी नाक पकड़ती है, कभी कान पकड़ती है, कभी चोटी पकड़ती है ना, कभी थप्पड़ मारती है ना। बाबा की मुरली में अलग अलग बातें आती है, माया तुमको क्या करती है। तो एक बार लिस्ट निकाली, माया क्या क्या कैसे पिछाड़ती है, तो कभी नाक पकड़ेगी, तो नाक पकड़ने से क्या होता है, एकदम सफोकेशन होता है ना, सांस लेना मुश्किल होता है। तो आत्मा जब कोई बहुत ही अंदर टेंशन में है कुछ कारण से, तो जैसे घुटन सी महसूसता होती, तो मतलब माया ने पकड़ा है नाक से, फिर कान से पकड़ लेती है, तो कान से पकड़ती है तो क्या होता है, कोई कान से पकड़ता है माना पर चिंतन किया या पर निंदा पर ग्लानी सुनी, माना माया ने नाक से पकड़ा, सॉरी कान से पकड़ा। फिर और क्या करती है माया, छोटी से पकड़ती है पीछे, तो सिर को पीछे कर देती है, तो पीछे सिर माना अभिमान, सिर नीचे माना नम्रता और आगे ऊपर सिर माना अभिमान, तो अभिमान में ला देती है। फिर क्या करती है, थप्पड़ भी मारती है, तो थप्पड़ मारना माना जैसे थप्पड़ मारते तो मुंह फिर जाता है ना, तो बाबा से मुंह फिरा देती है, अपने तरफ कर देती है माया। फिर और क्या करती है, बेहोश भी कर देती है, बाबा ने एक बार मुरली में कहा इसे मार के ठोसा बेहोश गिरा देती है। तो बाबा के बच्चे कोई विकार के वशीभूत हुए तो जैसे बेहोश हो गए। कई बार काला मुंह कर देते हैं, बाबा ये भी कहते हैं माया काला मुंह कर देती है, तो किसी ने एक लिस्ट निकाली थी माया क्या क्या करती है, हर मुरली में अलग अलग तरीका आता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को फिर हर मुरली में सावधान करते हैं, बाबा हमारे उस्ताद हैं, वो उस्ताद हमें सावधान करते हैं कैसे तुम माया के सामने सतर्क रहो। अगर आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे तो माया वार नहीं कर सकेगी, आपके आगे एक कवच आ जाएगा, ये कवच आपकी रक्षा करेगा, या ढाल आ जाएगी तो यही ढाल या कवच आपकी रक्षा करेंगे और माया का वार नहीं होगा। तो आत्म अभिमानी स्थिति की विधि क्या है? पहले तो हम हर वक्त ये याद रखें मैं आत्मा हूं। दो युग से दे अभिमान का इतना अभ्यास हो गया है जो ये भूल ही जाता है। देखो जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा ने बहुत अभ्यास किया आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने के लिए। हर बार बाबा अंदर ही अंदर कहते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरों को भी देखते थे आत्मा है। बाबा की लौकिक में युगल थी यशोदा, बाबा की लौकिक बहू थी राधिका, तो बाबा उनको तो बाबा दीवारों पर लिखते थे कैसे दृष्टि बदल जाए। यशोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि खुद को भी पक्का हो जाए और राधिका यशोदा अगर वो पढ़े दीवारों पर तो उनको भी पक्का हो जाए कि हम आत्मा हैं। बाबा हमको दैहिक दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि दैहिक दृष्टि माना यशोदा बाबा की पत्नी थी, लौकिक में युगल थी, और राधिका माना बाबा की बहू थी ब्रिज इंदिरा दादी जी। तो बाबा का अपने बहू में बहुत मोह था, बहुत मोह, बेटे में नहीं था इतना, पर बहू में बहुत मोह था। बहुत बाबा की एकदम डेडिकेटेड, एकदम जी हाँ बाबा, कदम के पीछे कदम रखने वाली थी। तो पर कैसे बाबा का मोह छूटा और आत्म स्थित अभिमानी स्थिति से देखा, तो उसके लिए अभ्यास करते थे बाबा। इसलिए सुबह सुबह उठ करके बिल्कुल मैं अशरीरी आत्मा हूँ, देह से न्यारी हूँ, एक ज्योति हूँ, ये अभ्यास करते थे। मम्मा भी अभ्यास करती थी, बिल्कुल देह से न्यारे बन जाए, बिल्कुल शरीर जैसे है ही नहीं, जड़ हो गया। शरीर जड़ हो जाता है ना, तो आत्मा निकल गए, शरीर जड़ हो गया। परंतु हमारा वो हठयोग नहीं है कि एकदम जड़ बन जाए, वो तो सन्यासी श्वास चढ़ाते हैं तो एकदम श्वास को रोक देते तो एकदम जड़ हो जाता है शरीर, लेकिन वो नहीं, हठयोग नहीं है, हम राजयोगी है। तो राजयोगी माना सरल भी हो, सहज भी हो, सुगम भी हो, कोई कष्ट भी ना हो, पर साथ साथ वो शक्ति भी मिले। तो ये जैसे भक्ति मार्ग में समझते हैं मन शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, ब्लैंक हो जाए, कुछ भी न सोचे, तो बाप तो वो जड़ता नहीं चाहिए, मन में सोच भी चले, श्रेष्ठ सोच चले कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ का वासी हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ इस जगत में, क्या करना है मुझे, तो आत्मा को करना है। तो आत्म अभिमानी रहने की विधि क्या है? आत्मा की हर बात का चिंतन करना, तो ऑटोमेटिकली जो देह का चिंतन है वो समाप्त हो जाएगा। देह अभिमान में क्या होता है? देह का चिंतन होता है, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं एक माँ हूँ, ये भी तो देह अभिमान है ना, मैं माँ हूँ। आत्म अभिमानी स्थिति में माँ हूँ क्या, कौन हूँ? आत्मा माँ है क्या? आत्मा तो बच्चा है बाबा का, तो मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं मामा हूँ, चाचा हूँ, काका हूँ, मामी हूँ, बहू हूँ, सास हूँ, ये सब संबंध रहते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में नहीं। तो जैसे देह अभिमान में है तो ये सब बातें याद है, जैसे बहू सामने आ कि मैं इसकी सास हूँ, भूलता थोड़ी, भूलता है हाँ, भूलता है या याद रहता है मैं इसकी सास हूँ, या ये मेरी सास है मैं बहू हूँ, ये मेरा पति है मैं इसकी पत्नी हूँ, भान रहता तो है ना, इतना सहज नहीं है भूलना। लेकिन जब आत्म अभिमानी स्थिति पक्की हो जाती, ये देह और देह के संबंध सब भूल जाते। इसीलिए जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम ब्रज, देह से देह के सब संबंधों को भूलो, यही आत्म अभिमानी स्थिति है, तब ही मामेकम शरणम ब्रज होगा, परमात्मा की शरण में जा सकेंगे। तो जब तक आत्म स्थिति नहीं बनी है तब तक बाबा की शरण में भी नहीं जा सकते। दुनिया में भक्ति मार्ग में शिव के ऊपर बलि चढ़ते हैं, जैसे पहले बाबा मुरली में कहते ना, काशी करवट खाते थे, वह सिर काट लेते थे अपना, और वो सिर जाके शिव के ऊपर पड़ता था, क्योंकि ये सिर ही है ना जो अभिमान और नम्रता दोनों का सूचक है। अभिमान में सिर ऊपर हो जाता है, नम्रता में सिर नीचे हो जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि नम्रचित बनो, तो वो फिर गला ही काट लेते, सिर ही काट लेते हैं। मैं को मारो तो बेचारा जो निर्दोष जानवर है बकरा, मैं करता, उसी को ही मार देते हैं। तो बाबा कहते इस अभिमान को मारो, इस संसार की जितनी भी उपलब्धियां हैं उसका घमंड, ये अज्ञान है, ये मैं हूं ही नहीं। तो एक और है, बिल्कुल भौतिक उपलब्धियों का या भौतिक बातें, सांसारिक बातें, उनका अभिमान, वो अभिमान से ही फिर चिंतन होता है, या चिंतन है तो अभिमान भी है, अभिमान नहीं है तो चिंतन भी नहीं है, चिंतन नहीं है तो अभिमान भी नहीं है, दोनों का आपस में संबंध है। तो एक और है वो अभिमान, और दूसरी ओर है बिल्कुल हीनता, हाँ, मैं तो कोई काम की नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, हाँ देखो वो कितनी अच्छी है, उसके अंदर कितनी विशेषताएं हैं, मेरे अंदर तो कोई विशेषता ही नहीं है, हाँ, तो अपने बारे में हीनता, ये भी अज्ञानता है, ये भी देह अभिमान है। तो देह अभिमान दोनों प्रकार का है, एक है हाँ, वो अभिमान जिसमें उपलब्धियों का घमंड है, प्राप्तियों का नशा है, जो कुछ है मेरे पास उसका उसका नशा, और दूसरी तरफ है नहीं है, इसीलिए अपने आप को बहुत हीन समझते हैं। दुनिया में तो लोग इसको नम्र समझते हैं, आरती में क्या कहते हैं, मैं मूर्ख हूँ, पापी हूँ, कामी हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, मैं तो तुम्हारी चरणों की धूल हूँ। एक बार किसी आत्मा ने बाबा को लिखा, बाबा मैं तो भूलों का सागर हूँ। बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, मैं तो भूलों का सागर हूँ, मैं सदा भूले करता रहता हूँ, और ये और आप मुझे माफ करते रहना, मैं भूले करता रहूंगा और आप मुझे माफ करते रहना, मैं भूलों का सागर हूँ। तो बाबा ये भूल मैंने की, तो बाबा ने उनको क्या जवाब दिया होगा, हाँ जी, हाँ कई समझते हैं ना कि कई भूले करेंगे, कहेंगे सॉरी सॉरी सॉरी, या बच्चे भी कोई भूल करते हैं, मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी, चलो दो बार चार बार सॉरी किया, माफ किया, लेकिन करता ही रहेगा। सॉरी सॉरी का मतलब क्या है, कि दोबारा न करे ना। मम्मा भी यही कहती थी कि पुरुषार्थी किसको कहा जाता है, पुरुषार्थी उसको कहा जाता है कि अगर एक बार भूल हुई और समझ आई कि ये भूल है, फिर वो दोबारा नहीं करेगा, अगर बार बार करता रहेगा तो पुरुषार्थी काय का हुआ। तो भूले की परंतु वो दोबारा न हो, एक बार चलो हो गई, उससे सीख लिया, उससे अनुभव ले लिया, लेकिन मैंने भूल की हाय मैंने इतनी बड़ी भूल की। अब हो तो गई, जो भूल हो गई वो अभी मिट थोड़ी सकेगी, लेकिन आगे भूल ना हो। तो वो जो हीनता हमारे अंदर आती है ना, ये भी दे अभिमान है। तो आत्म अभिमानी स्थिति का मतलब क्या है? जो आत्मा का स्वमान है, हर वक्त उस स्वमान को याद करते रहना जो बाबा हमें स्वमान देते हैं, चाहे वो साकारी स्वमान हो, चाहे वो आकारी रूप का स्वमान हो, चाहे निराकारी स्वरूप का स्वमान हो, वो तीनों ही आत्म अभिमानी स्थिति में आएगा। साकारी स्वरूप का स्वमान कौन सा है? मैं ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, शिव बाबा ने मुझे नया जन्म दिया है, इस समय मैं डायरेक्ट भगवान की संतान बना हूँ, तो हूँ तो मैं साकार में, आत्मा के नाते से तो अनादि बच्चे हैं ही हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, शिव बाबा कि हम मुख संतान ऐसे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के मुख संतान नहीं है। किसके मुख संतान है? ब्रह्मा बाबा के मुख संतान है, क्योंकि शिव बाबा के तो अनादि अविनाशी संतान है ही है। तो इसीलिए जो साकारी स्थिति की आत्म अभिमानी स्थिति माना, भले साकार शरीर में है ब्राह्मण माना, कोई आत्मा के हिसाब से ब्राह्मण तो नहीं कहेंगे ना, साकार शरीर में है। ब्रह्मा भी जिस्मानी पिता है, अलौकिक पिता है, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हम कहते हैं, इस समय वो डायरेक्ट हमारा फादर बना है, पिता बना है, जिनकी हम मुख संतान हैं। हम ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों का ही गायन है, इतनी महिमा ब्राह्मणों की शास्त्रों में है, वो कौन से ब्राह्मण होंगे? वो कुक वंशावली ब्राह्मण थोड़ी। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ब्रह्मचर्य माना ब्रह्मा का आचरण, जो ब्रह्मा का आचरण करता है वो ब्रह्माचारी, और उसी को ही ब्रह्मचारी कह दिया, तो ब्रह्मा की संतान है हम। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हो, अमृत वेला अगर नहीं उठते तो माना सच्चे ब्राह्मण नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला हो, फिर ब्रह्मा भोजन खाने वाला हो, शुद्ध भोजन खाने वाला हो, तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म ज्ञान जिसमें हो, ब्रह्म ज्ञान माना जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पाया, वो सारा ज्ञान हमारे अंदर आ जाए, वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो इस समय जो बाबा ज्ञान देते वो ब्रह्म ज्ञान कहो, जो ब्रह्मा ने, वास्तव में सारी ब्रह्मा की बात। अब ब्रह्म परम धाम को क्या ज्ञान होगा, उसकी ज्ञान की बात थोड़ी है, या ब्रह्म भोज, तो ब्रह्म तत्व थोड़ी भोज खाता है, भोजन कौन खाता है, शरीर के हिसाब से खाते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त ये कोई ब्रह्म तत्व के अंदर कोई ब्रह्म मुहूर्त की बात थोड़ी होगी, वहां तो सूरज ही नहीं उगता है जो ब्रह्म मुहूर्त कहीं, वहां तो सदा ही ब्रह्म मुहूर्त है नहीं परम धाम में, लेकिन इस सृष्टि की बात है, इस सृष्टि में सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ये नई रचना रच रहे हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय पर नई रचना रच रहे हैं। दुनिया तो सोई है, सवेरे 2 बजे 3 बजे दुनिया के लिए तो रात होती है, परंतु हम ब्राह्मणों के लिए वो ब्रह्म मुहूर्त है, सवेरा है, उनके लिए रात है, हमारे लिए प्रभात है। तो संगम माना प्रभात और उनके लिए रात, क्योंकि अज्ञान की नींद में सोए हुए, पता ही नहीं है कि हम कौन है। तो इसलिए है सारी ये संगम के स्वमान की स्थिति, साकारी स्वमान। तो जैसे ही हमने अपने आप को ब्राह्मण समझा, ये साकारी स्वमान धारण किया, उसका नशा मानो ये भी आत्म अभिमानी स्थिति में आएगा, क्योंकि उस वो जब नशा हमारे अंदर है तो बाकी जो दुनियावी नशे हैं ना, उनसे हम पार जा सकते हैं। जब तक ये स्वमान मैं ब्राह्मण हूँ ये स्वमान नहीं आया तब तक जो दुनिया का अभिमान है वो मिट नहीं सकता है। लौकिक दुनिया में भी हम देखते हैं ना, जो लौकिक में ब्राह्मण होते हैं उनको क्या अभिमान होता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, सबको कहेंगे मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो हम कोई ऐसे सबको कहते नहीं है कि हम तो ब्राह्मण है, क्योंकि वो तो ये समझेंगे भाई जो लौकिक में जाति के ब्राह्मण होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं। अब जाति के तो ब्राह्मण हम है नहीं ना, भले कोई होंगे भी जाति के ब्राह्मण भी होंगे, लेकिन भले नहीं है जाति के ब्राह्मण लेकिन वो तो फिर भी जाति के केवल ब्राह्मण है, पर कर्म के ब्राह्मण तो है ही नहीं, क्योंकि ये चार बातें तो उनके जीवन में है ही नहीं। और इस संगम पर हम वो चारों ही बातें जीवन में धारण करते हैं, ऑटोमेटिकली हम सच्चे ब्राह्मण बन जाते हैं। तो ये साकारी स्वमान जितना जितना हम धारण करते जाते हैं ये आत्म अभिमानी स्थिति है, क्योंकि वो फिर जो उल्टा नशा संसार का है दुनिया का है वो नहीं रहता। फिर आकारी ब्राह्मण भी बाबा कहते हैं, आकारी आत्म अभिमानी स्थिति क्या कि मैं आत्मा फरिश्ता की ड्रेस में हूँ, ये आत्म अभिमानी स्थिति का ही स्वरूप है, ये आकारी स्थिति है। भले इस समय मैं साकार में हूँ लेकिन संगम का लक्ष्य क्या है, संगम का लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना, देवता बनना, सतयुग का, तो ये दोनों लक्ष्य हमारे बुद्धि में है। संगम के अंत में फरिश्ता बनेंगे और भविष्य में जाकर के देवता बनेंगे। तो आत्म अभिमानी स्थिति में ये साकारी स्थिति भी है, ब्राह्मण का नशा, फरिश्ता का नशा और देवता का नशा, ये साकारी, ये माना फरिश्ता आकारी नशे में आ सकता है, पर ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हम इस संगम युग पर ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो ये अगर सदा नशा रहे तो ये भी आत्म अभिमानी स्थिति है। तो जैसे जैसे ये आत्म अभिमानी स्थिति बनती जाएगी और नशे सब भूलते जाएंगे। फिर आकारी नशा बाबा कहते हैं वतन को भी कभी न भूलो, जो मैं सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना हूँ वही मेरा मानो अंतिम स्वरूप होगा परम धाम जाने से पहले, और उसी रूप से मुझे सबको साक्षात्कार कराना है। जो बाबा कहते हैं कि अंत में तुम्हारे भक्त तुम्हारा साक्षात्कार करेंगे, देवी के रूप में साक्षात्कार करेंगे, फरिश्ता के रूप में साक्षात्कार करेंगे, देवता के रूप में साक्षात्कार करेंगे। वो सतयुग का साक्षात्कार की बात नहीं है, कौन सा कब का साक्षात्कार होगा, ये संगम के अंत का साक्षात्कार, पर वो तब साक्षात्कार कर सकेंगे जब हमारी ऐसी स्थिति बनेगी। तो वो नशा उसी आकारी स्थिति का रखना भी ये आत्म अभिमानी स्थिति है। और जैसे मैंने कहा मैं एक फरिश्ता हूँ तो ऑटोमेटिकली शरीर का जो हड्डी मांस का भान आता है, हाँ ये शरीर का भान वो मिट जाएगा। फरिश्ता तो बहुत हल्का है, मैं उड़ता हूँ, फरिश्ते के पैर धरती पर नहीं होते हैं। पश्चिमी दुनिया में हम जाते हैं ना, यूरोप, अमेरिका, सब देशों में आप जाइए वहां पर तो फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाते हैं। यूरोप के अंदर तो खास सब यूरोप के देशों में हर बिल्डिंग पर फरिश्ते 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 लगे हुए, रास्तों पर भी बड़े बड़े होर्डिंग्स फरिश्तों की है, कई प्रकार के फरिश्ते दिखाते हैं। और वो फरिश्ते भी कैसे दिखाते हैं, उनका कोई माँ बाप नहीं दिखाते, वो स्त्री है या पुरुष वो कोई नहीं दिखाते, यानी ये नहीं बताते उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, वो स्त्री रूप में है या पुरुष रूप में है वो नहीं, परंतु उनके कर्तव्य दिखाते। हर एक का फरिश्ता का कर्तव्य अलग अलग है। एक फरिश्ता है जो केवल बच्चों की रक्षा करता है तो वो दिखाए बड़े बड़े होर्डिंग्स, वहाँ वो फरिश्ता है उसके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं वो सब की रक्षा कर रहा है ऐसे। फिर दिखाएंगे दूसरा फरिश्ता है जो कोई बीमार है उनकी आके रक्षा कर रहे हैं, तीसरा फरिश्ता दिखाएंगे कि किस प्रकार बहुत गरीब है और उसको जैसे धन बांट रहे हैं, मतलब इस प्रकार से वो दिखाते हैं फरिश्ते का अलग अलग स्वरूप। परंतु ये भी आत्म अभिमानी स्थिति के रूप में, क्योंकि मैं आत्मा ही ये फरिश्ता का रूप धारण करती हूँ। और फिर जो निराकारी स्थिति है वो तो है ही है आत्म अभिमानी स्थिति। तो कभी बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति को धारण करो, कभी बाबा कहते हैं अशरीरी बन जाओ, कभी बाबा कहते हैं बिंदु रूप बन जाओ, कभी बाबा कहते हैं निराकारी स्थिति का अनुभव करो। तो ये सब हमारी निराकारी स्थिति माना आत्मा बन जाना। आत्मा बनना माना बिल्कुल आत्मा के सिवाय, ज्योति के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। मैं आत्मा हूँ, मैं देखूं भी सबको आत्मिक स्थिति में, देह भान तो भूल ही जाए। देह भान क्यों आता है? क्योंकि हमारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है ना, तो इसीलिए वो बार बार देह अभिमान हमको खींचता है। आधा कल्प की हमको ये आदत पड़ी हुई है देह अभिमान में आने की, और बार बार जो भारी चीज होती है वो खींचती है, हल्की चीज तो ऊपर जाती है। तो मैं बहुत हल्का हूँ, बहुत हल्का हूँ, ये जब जैसे आत्मा को भान आएगा तो ऊपर जाएंगे, और जैसे ही लगा कि ये शरीर हूँ तो बोझ महसूस होगा, नीचे आएंगे। तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन हम इसको सरल रूप से कैसे अनुभव करें? जैसे ही हम योग में बैठते हैं एक सेकेंड में अशरीरी बन जाएं। ये शरीर पर वस्त्र पड़े हैं, ये शरीर से अलग हैं। वैसे शरीर भी एक वस्त्र है जो मुझ आत्मा से अलग है। एक सेकेंड में चिंतन किया, मैं आत्मा हूँ, एक बिंदु हूँ और बन जाऊं। एक सेकेंड में कहाँ हूं मैं इस शरीर में? यहाँ ब्रकुटी के मध्य चमकता हुआ एक सितारा हूं। तो अपने आत्मा सिंहासन पर बैठ जाऊं, शरीर रूपी मोटर में मैं ड्राइवर बैठा हूं। एक सेकेंड लगता है, फिर मैं चाहूं तो कर्म करूं, नहीं चाहूं कर्म से न्यारा हो जाऊं, क्योंकि शरीर की इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। जैसे ड्राइवर चाहे तो गाड़ी राइट ले, लेफ्ट ले, फास्ट ले, स्लो ले, रिवर्स ले, हाँ, जहां जैसे चाहे वो मालिक है। तो मैं आत्मा भी इस शरीर का मालिक हूँ, ये शरीर मेरा रथ है, और मैं जैसे चाहूं इसको चलाऊं, नहीं चाहूं वो है ना, क्या कहते हैं, चाबी बंद करके रख दिया, बस शांत हो गया, इंजन शांत हो गई। भले शरीर तो अपना काम करेगा, भोजन भी पचेगा जो खाया है, श्वास भी चलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सब कुछ होगा। ये जो भी सेल्स है उसको भी, वो भी टूटते हैं, नहीं बनते, वो सब होता रहेगा, सब कुछ एक एक अंग अपना काम करता है। लेकिन जो वॉलंटरी एक्शन है हमारे, ये पंच इंद्रियां, वो हमारे कंट्रोल में है। चाहूं तो देखूं, चाहूं तो देखते हुए भी न देखूं, ये नहीं कि मैं न चाहूं और तो भी ध्यान जाए, नहीं, इसको कहेंगे कि अपने ऊपर कंट्रोल। कई बातें सुनाई दे रही है, अभी चाहूं तो सुनो, नहीं चाहूं तो नहीं सुनो। इसीलिए कहते ना, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये दो के लिए कहेंगे, क्योंकि दिखाई तो देता है ना, आंखें बंद तो नहीं करेंगे, और कान भी खुले हुए हैं, कान को कोई दरवाजा तो है नहीं जो बंद रखे, हाथों से हम बंद करें तो और बात है, नहीं तो कानों से तो अंदर जाएगा ही, तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। और जो सामने दृश्य है, जो और कुछ जो कुछ करते उनको भी हम रोक नहीं सकते, लोग जो बोलते उनको भी हम रोक नहीं सकते। तो हम रोक नहीं, उनको नहीं रोक सकते, पर खुद को तो रोक सकते हैं ना, कैसे रोक सकते हैं? कि देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो। हम ऐसे नहीं कहेंगे ये मत बोलो, वो कहेगा बोलूंगा, आप मेरा मुंह क्या बंद करोगे, उनका मुंह तो बंद नहीं कर सकते ना, किसका मुंह बंद कर सकते हैं नहीं। तो इसीलिए हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, बस मैं नहीं सुनो, भले कानों में जाए, भले मेरे बारे में भी वो कह रहे हो तो भी मैं न सुनू, ये एक आत्म अभिमानी स्थिति है। सुनते हुए न सुनना, देखते हुए नहीं देखना। और जिसको बाबा कई बार कहते, चलते फिरते भी आत्म अभिमानी स्थिति रहे, हम चल रहे हैं लेकिन जैसे फरिश्ता बन के चल रहे हैं। मम्मा थी ना, तो मम्मा जब देखती थी कई बच्चे चलते हैं ठप 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 करते हुए, चप्पल को ठप 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 इतना जोर से आवाज करते हुए चलते थे, तो मम्मा कहती देखो धरती को भी दुख दे रहे हो, ठप 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 करके चलना माना क्या, धरती को भी दुख देना है, क्योंकि आवाज होगा माना उसको लगेगा तो सही ना। तो इसीलिए ये भी दुख न दो, धरती को भी दुख न दो, आप चल रहे हो वो भी किसी को पता भी न चले, इसको कहेंगे फरिश्तों की चाल। जैसे चल रहे हैं पर इतना हल्का रूप से चल रहे हैं, कोई थोड़ा सा जितना चलेंगे आवाज ही करते रहेंगे, कुर्सी घोटाएंगे, ये करेंगे जोर से आवाज ही करते रहेंगे, जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं। मम्मा को देखते थे, बाबा को देखते थे, बिल्कुल जैसे बिल्कुल फरिश्तों की चाल से, बहुत हल्के बहुत सरल। स्टेज भी बाबा मम्मा की इतनी सरल, दादियों की भी हम देखते हैं, दादी जानकी है, दादी कुमार का, सचमुच हम देखते थे इतना साल दादियों के संग रहने का हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला। तो हम देखते थे कैसे दादियां चल रही है, कैसे खा भी रही है, कैसे बात भी कर रही है, लेकिन वो आत्म अभिमानी स्थिति अनुभव होती थी। तो बहुत कुछ सीखते थे कि हम भी ऐसे ही करें। चलो दादी को किसने कुछ कह भी दिया लेकिन दादी बिल्कुल न्यारी हो जाती थी, जैसे कि सुना ही नहीं, समझो कुछ, कई बार लोग आएंगे कई प्रकार की बातें करते हैं लेकिन दादी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई गुस्सा आ जाए, नफरत हो, या एकदम आंखें एकदम जैसे नहीं गुस्से में आंखें कैसे हो जाती है, या बस अभी बोले जा रहे परंतु अपने आप को कंट्रोल करें नहीं, बिल्कुल जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनते। मुझे तो याद है एक बार दादी को एक भाई ने आके पता नहीं क्या क्या बोला, दादी आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, आपको ये समझ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। दादी शांत शांत, कुछ नहीं जवाब, वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया बोलता गया, तो बस दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया, एक शब्द नहीं कहा। और जब वो आखिर कहां तक बोलेगा, आखिर शांत हो गया, तो दादी ने कहा बस और भी कुछ कहना है, और भी कुछ कहना है। अब बेचारा क्या कहे, तो बोल दिया, वो जैसे जैसे दूध का उबाला होता ना निकल गया, तो फिर तो ठंडा हो ही गया, शांत हो ही गया। तो फिर दादी ने उसको कहा देखो भैया बैठो मैं आपको समझाती हूँ। और फिर दादी ने उसको जो समझाया और उसको बताया कि देखो कई बातें सब कुछ जानते हुए भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये परिवार है, ये परिवार है। अब कोई माता पिता के बच्चे समझो कोई ऐसा है तो क्या बच्चे को निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, जाओ निकल जाओ, अरे भाई बच्चा है ना, आखिर तो बेटा है ना, निकाल थोड़ी सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और क्या उनको हम पनिशमेंट देंगे, कैसे करेंगे, यहाँ की पनिशमेंट क्या है। दादी कहती थी अच्छा जाओ बाबा के कमरे में बैठ जाओ, दो घंटा बाबा के कमरे में, आज नाश्ता नहीं खाना, आज भोजन नहीं करना, आज आराम नहीं करना, दोपहर का आप जाके बाबा के कमरे में चार घंटा बैठो, अब यही सजा है। और क्या सजा देंगे, उसको मारेंगे क्या, पीटेंगे क्या, कुछ करेंगे क्या, क्या करेंगे। और अंदर ही अंदर बाबा को कहो, लिख के दो अंदर ही अंदर, मानो ये अपने आप को सुधारो, और क्या कर सकते, मना और कोई ऐसी ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया जो उसको कोई दूसरी सजा देवे, वो तो धर्मराज बैठा है, बाबा बैठा है। आज भी बाबा ने कहा ना, कल की मुरली थी, धर्मराज तो साथ में है ही है, वो गवर्नमेंट के साथ चीफ जस्टिस साथ में है और इस गवर्नमेंट के साथ धर्मराज है, तो न्याय तो धर्मराज देगा। इसलिए हम थोड़ी है न्याय देने वाले, या हम थोड़ी है जो लॉ को हाथ में उठाएंगे। तो उसको समझाते गए समझाते गए समझाते गए, बेचारा शांत हो गया। नहीं तो दादी दादी तुम ये नहीं करती ये नहीं करती, तो दादी क्या करेगी। पर दादी ने अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ी, और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ मैं भी कोई कम हो क्या। बाबा ने कहा शक्ति हो तो शक्ति दिखाओ ना, मैं उस रूप से शक्ति थोड़ी है। हम शक्ति किस रूप में है, अष्ट शक्तियां है ना। शक्ति का मतलब ये थोड़ी है कि सहन भी करना है उस समय सामना करें, वो शक्ति नहीं है, वो उल्टा हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये आत्म अभिमानी स्थिति है, सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो, और जो बोलना है वो युक्ति युक्त बोलो, किसी को दुख भी न पहुंचे। आज भी बाबा ने कितना कहा मीठा बोलो, देखो बाबा कितना मीठा कितना प्यारा। बाबा आए हैं हमें फूल बनाने के लिए। तो ये साकारी स्थिति की आत्म अभिमानी स्थिति है, मुझे फूल बनना है, मुझे सबको खुशबू देनी है, मुझे अपने गुणों से सबको सुगंधित करना है। और ये बाबा का दिया हुआ है, ये बाबा का दिया हुआ, ये भी आत्म अभिमानी स्थिति है, जिसको बाबा कहते हैं मैं और मेरा, उसकी जरा भी बदबू नहीं आए। नहीं तो दुनिया में देखो सारा दिन मैं मेरा यही लगा रहता है ना, है क्या। अपनी भाषा में जो भी बोल बोलते हैं दुनिया के लोग, उसमें मैं मेरा कितनी बार आता है। किसी ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाली कि जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं ना, तो ऐसा कौन सा शब्द है ये सारे शब्दकोश डिक्शनरी में कितने शब्द हैं, लाखों शब्द होंगे, लेकिन कौन सा ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है कौन सा, मैं और मेरा, यही दो। मैं कहता हूं ना, अरे मेरा सुनो ना तुम, मेरी बात है ये, मैं मेरा, तो भले 5 मिनट बोलेंगे और 5 मिनट में मैं मेरा कितनी बार आता है। तो जब उसने ये बात कही तो हमने सचमुच नोट किया कि हमारी भाषा में मैं मेरा कितना आता है। तो ये तो सब है तो दे अभिमान का ही स्वरूप। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, बाबा ने भी एक बार मुरली में कहा कि मैं और मेरा ये पाप के दो दरवाजे हैं। पहला दरवाजा है मैं, जो अभिमान के वश कहते हैं, और दूसरा दरवाजा है मेरा, जो लोभ और मोह के वश कहते हैं। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारा इस मैं मेरा में आ जाता है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि चलो मैं कहने की आदत है तो क्या करो, मैं की बजाय मैं तो कहो, लेकिन मैं के साथ क्या जोड़ो, मैं आत्मा। फिर मैं कैसी आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, शुद्ध स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, ये स्वमान है आत्मा का। तो ये है मैं के साथ ये आत्मा के गुण जोड़ो, ये स्वमान है। फिर मेरा 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 कहने की आदत है, चलो भले बोलो मेरा, लेकिन मेरा के साथ क्या जोड़ो, मेरा बाबा। हाँ मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहा तो वो जो बाकी मेरा मेरा है वो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं मेरा उस रूप से मैं मेरा कहा तो बाबा जरूर याद आएगा। मैं और मेरा ये शरीर, बाबा कहते इसको भी अब आप दोनों तो साथ में ही हो ना, ये तो जोड़ी है ही है। तो मैं आत्मा मेरा शरीर, तो मेरा शरीर है ये, मैं नहीं हूं। तो जैसे ये एक अभ्यास हमारा बना रहे, शरीर के बिना आत्मा भी क्या करेगी, इसलिए शरीर तो चाहिए, ऐसे नहीं कि शरीर नहीं चाहिए, शरीर के बिना तो कर्म नहीं होगा ना, आत्मा नहीं तो कर्म कैसे करेगी। तो कर्म करने लिए शरीर तो चाहिए, पर शरीर होते हुए भी ये मैं नहीं हूं। और अगर ये मेरा है तो बाबा कई बार कहते करण करावन हार बन जाओ। क्या करण करावन हार हूँ? हाँ, मैं आत्मा करण हार हूँ और इस शरीर के द्वारा करवाता हूँ। बाबा करण हार है और मैं आत्मा करण हार हूँ, वो शक्ति उनकी और ये मैं आत्मा कर रहा हूँ। आत्मा शरीर का संबंध है, मैं आत्मा मालिक करावन हार और ये शरीर करण हार। तो करण करावन हार बन जाएंगे और उसके आधार से जब चाहो एक सेकंड में न्यारे बन सकते हो। एक सेकंड में मुझे अभी बाजा नहीं बजाना है तो बंद कर दो, ऐसे नहीं कि अपने आप बजता रहेगा, नहीं बजेगा। मुझे नहीं बोलना है, एक सेकंड में मुख बंद हो जाए। मुझे नहीं चलना है, एक सेकंड में खड़े हो जाओ। बाबा कहते अटेंशन, तो अटेंशन कहा माना, एक सेकंड में एकदम अटेंशन। तो ये भी मन बुद्धि को अटेंशन देना, ध्यान खींचवाना, हर बार याद कराना, मैं कौन, मेरा कौन, ये आत्म अभिमानी स्थिति है। और उसी स्थिति में अगर हम दिन भर में कितना समय रहते हैं, बाबा कहते हैं उसके आधार से तुम्हारी अंत की स्थिति बनी। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देती हूँ, मेरा प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव। हाँ, एक कैसे हमारा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और कैसे बाबा ने हमको बचाया, नहीं तो जा रहे थे परमधाम। सच्ची बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो हम गाड़ी में थे और अचानक कोई, गाड़ी फास्ट भी नहीं थी, स्लो थी, और अचानक कोई व्यक्ति ऐसे पता नहीं कहाँ से आ गया, पीछे का वो पहाड़ था और उस उसके पीछे से आ गया। और वो गांव के लोग होते ना, सिर पर लकड़ी रखी थी, गांव से जंगल से काट करके आए थे। हम पांच जने थे गाड़ी के अंदर, बहुत साल पहले की बात है, उस समय एम्बेसडर गाड़ियां होती थी, बहुत मजबूत तो होती थी। तो अचानक ड्राइवर ने देखा और ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाई। अब ब्रेक तो लगी नहीं, पता नहीं क्या हुआ, उसको कुछ समझ ही नहीं आया। तो सोचा कि मैं इसको टर्न करूं। अब टर्न किया, अब एक्सल जो था वो पता नहीं क्या हुआ, टूट गया, क्या मालूम नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम तो गाड़ी में बैठे थे, हम तो कुछ भी नहीं सोच रहे थे, ऐसे ही बाबा की याद में बैठे थे। तो उसी समय जैसे टर्न किया, वो व्यक्ति जो था उसको लगा और वो गिर गया, वो गिर गया, उसके पैर को लगा, गिर के आगे गिर गया और उसके सिर पर जो था ना ये लकड़ी, वो उस उछल गया और वो जो हमारा आगे का स्क्रीन था गाड़ी का उसको आके लगा और वो स्क्रीन को लगा, वो स्क्रीन टुकड़े 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 होने लगी। और अब आगे एक बहुत बड़ा खंभा था, तो जाकर के वो खंभे को लग सकता था, टर्न करके खंभे को लग सकता था, या तो खाई थी, खाई भी थी, खंभा भी था, सब कुछ था, तो या तो खाई में जाकर के वो नीचे गाड़ी गिर सकती थी। तो उसी समय मुझे जो अनुभव हुआ, और भी जो होंगे उनका अपना अनुभव होगा, पर मुझे जो अनुभव हुआ जैसे ये दिल की धड़कन बंद हो गई और बिल्कुल मैं इतनी हल्की हो गई, ऐसे हल्की। और मैं बाबा को कहती, बाबा मैं आ रही हूँ, बाबा मैं आ रही हूँ। और एकदम अशरीरी हो गई, बिल्कुल अशरीरी, जैसे शरीर था ही नहीं। और फिर थोड़ी देर के बाद आंखें खुली, हाँ मतलब आंखें ही बंद कर दी, मैं बाबा मैं आ रही हूँ, क्योंकि पता नहीं खाई में गिरेंगे या वो ये खंभे से लगेगा, कुछ पता नहीं। और ये आवाज जो हुआ, फिर शीशा टूटा, वो जो एक्सल वो व्हील जो था ना वो भी टूट गया, पता नहीं क्या, मतलब बहुत कुछ हुआ। और उसके बाद आंखें खुली तो मैंने देखा फिर तो जिंदा ही है। तो परंतु क्या हुआ, देखो कैसे बाबा ने कैसी रक्षा की, वो न खंभे को लगा न खाई में गिरा, वहां झाड़ियां थी, पता नहीं मतलब वो झाड़ियां थी, तो वो गाड़ी जो जाकर के सीधा झाड़ियों में जाके ऐसे टेढ़ी हो गई। हम जो अंदर थे, पीछे हम तीन बहनें बैठी थी, वो एक दो के ऊपर लुढ़क गई, मतलब अंदर लुढ़क गई, परंतु किसी की भी हड्डी नहीं टूटी। और हमने तो बहुत जोर से वो आगे का वो पकड़ा हुआ था, तो यहाँ पर जाके लगा, थोड़ा खरोच आया गले को और सिर को, बस खरोच, ज्यादा कुछ नहीं। जो बीच में बहन बैठी थी वो थोड़ी पतली थी, छोटी थी, वो तो नीचे ही गिर गई वो गाड़ी के। और जो दूसरी बाजू में थी वो बहुत मोटी थी, फिर वो उसके ऊपर गिर गई। और मैं इस तरफ बैठी थी तो एकदम जोर से पकड़ के, पर एकदम जैसे शरीर ही बन गई, और परंतु बच गए, सब बच गए, कुछ ऐसे किसी की हड्डी नहीं टूटी। पर गाड़ी को अगर आप देखते तो कोई सोचे कि ये तो सब इसमें खत्म हो गए होंगे, मतलब ऐसा हाल हुआ, लेकिन बाबा ने कैसे बचाया। यदि कहने का मेरा भाव है कि उस समय आत्मा को और कुछ याद ना आए, बस मैं आप बाबा मैं आपके पास आ रही, एकदम अशरीरी बन जाए। अब ये भी जो आत्मा गई होगी, जो जिसने कल शरीर छोड़ा, उसका भी कितना बड़ा भाग्य है, हा? उसको पता भी नहीं चला होगा, पता चला होगा, तो उसके अंदर में जरूर कोई इच्छा तो होगी, ये मैं बाबा के घर में शरीर छोड़, कुछ तो होगा, हा? जो बाबा ने उसकी इच्छा पूरी की जी, था उसको क्या मन में, कभी होगा पर कभी बताया नहीं होगा। परंतु भाव ये कहने का कि सहज ही हम अशरीरी बन जाएं, एक सेकेंड में ब्रह्मा बाबा कैसे एक सेकेंड में अशरीरी बन गए। शिव बाबा ने बुलाया, शिव बाबा बच्चे आ जाओ, बाबा का संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप ने बुलाया कि फरिश्ते बन जाओ, हा? फिर अंतिम हिसाब किताब देखा, बाबा ने एक सेकेंड में चुकतू कर लिया और आत्मा उड़ गई, तैयार थे। तो जैसे बाबा कहते ना, हलवा जब पकने आता है तो क्या होता है, घी निकलता जाता है, हल्का होता जाता है, और जो कढ़ाई पर चिपकने वाला चिपकता रहता है वो सब चिपकना बंद हो जाता है और हल्का होता जाता है, घी निकलता जाता है और तैयार हो गया। तो आत्मा भी ऐसे ही तैयार हो जाए, हाँ, मैं और मेरा, मैं आत्मा, मैं बाबा का, इस बाबा के सिवा और कुछ नहीं, यही अनुभव हम सब करें। तो चलिए अब हम आधा घंटा इसका अभ्यास करेंगे। अभी हम सभी आत्मस्थिति का अनुभव करेंगे। ये देह, देह के संबंध, देह की दुनिया, व्यक्ति वस्तु वैभव, इन सब से परे हो जाओ। मैं आत्मा, अत्यंत हल्की, सर्व बंधनों से मुक्त, मैं शुद्ध आत्मा, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं अकाल स्वरूप आत्मा, अजर अमर अविनाशी आत्मा, दिव्य ज्योति आत्मा, प्रकाश का पुंज आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति धाम मुझ आत्मा का निज धाम है। शांति के सागर शिव बाबा मेरे प्यारे परम पिता हैं। मैं शांत स्वरूप, शांति की शक्ति, मुझ आत्मा में विद्यमान है। मैं आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। निर्संकल्प हूँ। एक दिव्य शक्ति हूँ। अत्यंत हल्की हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा डबल लाइट हूँ। हल्की भी हूँ और प्रकाश का स्वरूप हूँ। यह शरीर तो विनाशी है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, सदा थी हूँ और रहूंगी। मुझ आत्मा का मूल वतन अति प्यारा है, साकार सृष्टि पर आकर पाठ बजाया, अब उसी धाम निज धाम की वासी बन गई। शिव बाबा के अति करीब हूँ, उनकी छत्र छाया के अंदर हूँ, शिव बाबा का प्यार मुझ आत्मा पर बरस रहा है, मेरे सर्व संबंध केवल एक के साथ है, प्यारे शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी ही थी, आपकी ही हूँ, सदा आपकी ही होकर रहूंगी। इस संगम युग पर आपने मुझे एक नया जन्म दिया, मेरे प्राण आधार बने, आपका सानिध्य पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। जो पाना था वो आपने सब कुछ दे दिया बाबा, मैं तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, भरपूर हूं। यही आत्म अभिमानी स्थिति अति शक्तिशाली स्थिति है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मेरे प्यारे बाबा, अब तो केवल आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। आपसे ही शक्ति प्राप्त कर मैं आत्मा शक्तिशाली बन रही हूं, माया जीत बन रही हूं, सर्व बंधनों से मुक्त हो रही हूं। और आपके साथ ही वापस अपने धाम लौटना है। एक सेकंड में अपने धाम उड़कर आपके पास आ गई। इस बेहद धाम में बस बाबा और मैं, मैं केवल बाबा को ही देखती रहूं। मैं दिव्य ज्योति आत्मा, उस दिव्य प्रकाश को ही देख रही हूं। कितना सुंदर, कितना श्रेष्ठ, कितना शक्तिशाली। आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचान चुकी है। मैं कितनी शुद्ध आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा, निर्भय आत्मा। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। यही आत्म अभिमानी स्थिति का नशा हमें हल्का बनाकर अपने वतन में उड़ा देता है।